इनकी चील जैसी तेज निगाहों से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। भैया से मिलने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। आरवी परेशान सी तैयार होने लगी। ब्रेकफास्ट के वक्त भी सब शांत थे। रोज की तरह शान ने अंशु को स्कूल छोड़ा, फिर आरवी के साथ ऑडिटोरियम पहुंच गया। रिहर्सल शुरू हुई और आरवी बड़े ही ध्यान से सब देखने लगी। उसके दिमाग में सुभाष जी की बताई बातें भी घूम रही थीं और अब उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा था। धोखे वाले सीन की रिहर्सल में ही लंच ब्रेक हो गया और आरवी रश्मि के साथ अनुपमा जी से मिलने चली गई। और कहीं ना कहीं वो जानती थी कि शान की नज़र अब भी उस पर होगी। कुछ देर वो उनके पास बैठी, फिर अपने रूम में आ गई। सुबह से वो सोच रही थी कि शान की नज़रों से बचते हुए अर्जुन से कैसे मिले, क्योंकि बीते दिनों में शान भले ही उसको अपनी नफ़रत का एहसास करवा रहा था, पर थोड़ा सॉफ्ट पड़ गया था उसके लिए। और वो नहीं चाहती थी कि उसके अर्जुन से मिलने की बात जानने के बाद शान फिर से उस पर भड़क जाए। वो उसकी नफ़रत को मिटाना चाहती थी, जिसके लिए वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, पर अर्जुन या अमरजीत जी से मिलने और बात करने से वो नफ़रत की आग और भड़क जाती। इसलिए उसने अनुपमा जी से मिलने का बहाना बनाया ताकि उनके साथ साथ अर्जुन से भी मिल ले। पर शान की सुबह की बात सुनने के बाद वो कुछ परेशान हो गई। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो अर्जुन से अभी मिलेगी नहीं, फ़ोन पर बात करके उसको सब बता देगी। पर फ़ोन पर बात करने के लिए भी उसको ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहां वो आराम से उससे बात कर सके और शान को उसकी खबर भी ना हो। आरवी को अपना घर ही इस काम के लिए सबसे सही जगह लगी और चालाकी दिखाते हुए उसने अपने फ़ोन से अर्जुन को फ़ोन ना करके रश्मि का फ़ोन उससे ले लिया और उसे नीचे अनुपमा जी के पास छोड़कर खुद अपने रूम में आ गई। उसने अपने फ़ोन से अर्जुन का नंबर निकालकर रश्मि के फ़ोन से उसे फ़ोन कर दिया। दूसरी तरफ अर्जुन भी बेचैन था, क्योंकि इन 5 दिनों में आरवी से उसकी बात नहीं हुई थी। इस वक्त लंच ब्रेक था तो वो अपने कैबिन में बैठा किसी फाइल को पढ़ रहा था, तभी अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अननोन नंबर देखा तो कुछ पल सोचने के बाद उसने कॉल रिसीव किया। हेलो। हेलो भैया, मैं आरवी बोल रही हूँ। दूसरी तरफ आरवी की आवाज़ सुनकर अर्जुन ने चौंकते हुए अपने फ़ोन की स्क्रीन पर चमकते नंबर को देखा, फिर फ़ोन कान पर लगाते हुए कुछ हैरानी से बोला, आरवी ये तुम किस नंबर से मुझे फ़ोन कर रही हो और कहाँ गायब थी इतने दिनों से? मुझे फ़ोन करने से मना करके तुमने खुद भी मुझे फ़ोन नहीं किया। तुम ठीक तो हो ना? शान ने फिर से कुछ गलत तो नहीं किया तुम्हारे साथ? उसकी हैरानी अब चिंता में बदल चुकी थी। वो आरवी से एक के बाद एक सवाल किए जा रहा था और उन सवालों में उसका प्यार, परवाह और फिक्र झलक रही थी। आरवी के लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसने शांत लहजे में कहा, मैं ठीक हूँ भैया, उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। मैंने आपको फ़ोन करने से मना किया था क्योंकि आखिरी बार जब हमारी बात हुई थी तो उन्हें पता चल गया था और वो बहुत नाराज़ हुए थे। मैं नहीं चाहती थी कि उनका गुस्सा और बढ़े, इसलिए मैंने सोचा था कि मौका देखकर मैं खुद आपको फ़ोन करूंगी, जिससे मेरी आपसे बात भी हो जाए और उन्हें पता भी ना चले। लेकिन बीते दिन मुझे मौका ही नहीं मिला। आज बड़ी मुश्किल से उनकी नज़रों से दूर आकर अपनी दोस्त के नंबर से आपको फ़ोन किया है। अब तो मैंने आपको आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए, चलिए अब शांत हो जाइए। अर्जुन ने जब उसकी बातें सुनी तब जाकर उसको विश्वास हुआ कि वो ठीक है। इतने दिनों से जो इतना परेशान और बेचैन था, पर आज जाकर उसका मन शांत हो गया था कि उसकी बहन ठीक है। उसने कुछ गहरी सांसें अंदर बाहर करते हुए खुद को सामान्य किया, फिर आराम से बोला, कैसी हो तुम और शान कैसा है? अब भी उतना ही गुस्सा करता है तुम पर? नहीं भैया, अब पहले से कम नाराज़ होते हैं, एहसान जताते हैं पर परवाह भी करते हैं। मैं कोशिश कर रही थी कि अपने प्यार से उनके गुस्से और नफरत को कम कर सकूं, शायद कामयाबी मिल जाए। यही उम्मीद है मुझे भी, क्योंकि जब तक उसके अंदर से ये नफरत नहीं निकलेगी कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर उसने हमें बर्बाद भी कर लिया तब भी तेरी जिंदगी में खुशियां नहीं आएंगी। अगर तुझे रियल शान को पाना है तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो हकीकत सामने लाकर इस नफरत की वजह को ही खत्म कर दिया जाए, या फिर तेरा प्यार उसको मजबूर कर दे इस नफरत को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिसमें से पहला रास्ता सिर्फ मुश्किल ही नहीं है बल्कि लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अभी तक हमें खुद को ही नहीं पता कि आखिर सालों पहले ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से शान इस हद तक डैड से नफरत करता है कि उस नफरत की आग में ना सिर्फ तुझे बल्कि खुद को और अपनी खुशियों तक को जलाने को तैयार है। और जब तक हमें ही सारी बातें पता नहीं चल जाती, हम सच को शान के सामने ला ही नहीं सकते। अर्जुन अब काफी गंभीर लग रहा था। उसकी बातें सुनकर आरवी को सुभाष जी की बताई बातें याद आ गईं और उसके चेहरे पर भी गंभीर भाव भर आए। जब से उसने शान की तरफ के सच को जाना था तभी ये अजीब सी उलझन में फंसती जा रही थी। उसका दर्द महसूस करके बेचैनी हो जाती और यही वजह थी कि अपनी नाराजगी को भुलाकर शान के दिल में अपने लिए प्यार जगाने की कोशिश शुरू कर दी थी। पर उसमें भी वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे उसके दिल से नफरत को बाहर निकाले। कुछ देर उनके बीच गहरी खामोशी छाई रही, फिर आरवी ने ठंडी आह भरते हुए गंभीरता से कहा, भैया मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया था कि आपसे बात करने के बाद उस दिन मैंने डैड से इस बारे में बात की थी। पहले तो जैसा कि मैंने कहा ही था कि डैड मुझे कुछ भी बताने को राजी ही नहीं थे, पर फिर जब मैंने उन्हें थोड़ा फोर्स किया, इमोशनल बातें की, तो उन्होंने मुझे सालों पहले जो भी हुआ वो सब बता दिया। और अब मैं जानती हूँ कि क्यों मिस्टर मल्होत्रा ठाकुर साहब से इतनी नफरत करते हैं, क्यों उन्हें बर्बाद करवाना चाहते हैं, वो भी उनके ही खून के हाथों। मैं जानती हूँ कि नफरत की जिस आग में वो हमारे रिश्ते को जलाने जा रहे हैं, उस आग के इतना भड़कने की वजह क्या है। मैं जान गई हूँ कि क्यों वो सिर्फ ठाकुर साहब से ही नहीं बल्कि आपसे और मुझसे भी इतनी नफरत करते हैं। मुझे पता चल गया है कि क्यों वो मुझे आपसे और ठाकुर साहब से मिलने और बात नहीं करने देना चाहते। वो बस वही लौटा रहे हैं जो उन्हें दिया गया है। आरवी के चेहरे पर अजीब सा दर्द, तड़प और नफरत के भाव भराए थे। उसकी बातें सुनकर अर्जुन के चेहरे पर उलझन और हैरानी भरे भाव भराए। वो खामोशी से आरवी की बात सुनता रहा और जैसे ही वो चुप हुई, अर्जुन अधीरता से बोल उठा, तुम कहना क्या चाहती हो? ऐसा क्या हुआ था सालों पहले जिसका जिक्र करते हुए तुम्हारे लहजे में नफरत उभरने लगी? क्यों करता है शान डैड से इतनी नफरत? और अगर उन्होंने कुछ किया तो उसका बदला तुझसे और मुझसे लेने का क्या मतलब हुआ? अर्जुन के मन में और भी कई सवाल तूफान मचाए हुए थे, पर वो इतने में ही खामोश हो गया और आरवी के जवाब का इंतजार करने लगा। आरवी कुछ पल खामोश रह गई, फिर शान के बारे में सोचते हुए उसने कड़वाहट से कहा, उनके साथ भी यही किया गया था भैया, उनकी भी कोई गलती नहीं थी, पर सजा वो भुगतते आ रहे हैं। 7 साल के थे वो सिर्फ, उस उम्र में बच्चे को ठीक से सही गलत में फर्क भी नहीं करना आता, और उस उम्र में उनके साथ इतना गलत किया गया जिसने उस बच्चे को उस छोटी सी उम्र में बड़ा बनने पर मजबूर कर दिया, उनसे उनका बचपन छीन लिया।